पहले दौर में बच्चों से खिदमत कराई जाती थी, आज वो बेचारे खुद खिदमत कराते हैं। तो ये अब दूसरा किरदार है, वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा। सूरह बनी इसराइल में किस लफ्ज़ से मना किया था? उफ़। यहाँ क्या है, दोबारा वही लफ्ज़ है कि लफ्ज़ उफ़ से उनके दिल का चिराग बुझ जाएगा, और सबसे हल्का लफ्ज़ है नागवारी के एहसास पे। तो ये बिगड़ी हुई औलाद है जो कहते क्या है उफ़ है, क्या मुझे वादे देते रहते हो कि मरने के बाद उठाए जाएंगे। यही बातें तो पिछलों को भी कही जाती थी, आज तक तो कोई मुर्दा ना जिंदा हुआ। वहुमा यस्तगीसानी। अब इस जुमले को सुनकर माँ बाप की बेबसी महसूस कीजिए। वो दोनों उसको दुहाइयाँ दे रहे थे, वही लाका हलाकत हो तबाही हो तेरी, आमिन ईमान ले आ, इन्ना वादल्ला ही हक, अल्लाह का वादा सच है। फ़यकूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, बच्चा है कि मान के नहीं दे रहा। कह रहे ये पिछली कहानियाँ मुझे पेश कर रहे हैं तो क्या पता चला, दुनिया की बहुत सारी तालीम के बावजूद भी ऐसे बच्चे कामयाब नहीं हैं जो अपने माँ बाप को टेक केयर नहीं करते। फिर आगे वलिकुल्लिन दरजात में मामिलू, और हर एक के दर्जे हैं उसके मुताबिक जो उन्होंने अमल किए। वलयुवफ्फियन्नहुम आमालहुम, और अलबत्ता हम ज़रूर पूरे देंगे उनको उनके आमाल के बदले, मुराद है और वो जुल्म न किए जाएंगे, यानी आज जैसा करेंगे कल वैसा ही भरेंगे। आगे आयत 20, काफिरों को नेकी का बदला दुनिया ही में मिल जाता है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग गलती का शिकार होते, कहते देखो ना अल्लाह इनसे खुश है तभी तो इनको इतना दे रहा है, देखो रंग भी इनका इतना गोरा है, शक्लें भी इतनी प्यारी, नाक भी इतनी बारीक है, तो अल्लाह खुश है ना इसीलिए। और इनके मुल्क देखे हैं, इनकी सड़कें देखी हैं, एक दफ़ा किसी बाहर के मुल्क से हुआ है गुन गाते नहीं थकते, गोया कि अल्हम्दुलिल्लाह की बजाय अल्हम्दु उनकी। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इनको इनकी नेकियों का दुनिया का बदला मिल रहा है। उनको कल कह दिया जाएगा अज़हब तुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम अद्दुनिया, तुम ले गए अपने हिस्से का बदला दुनिया की जिंदगी में, वस्तमता तुम भी हा, और तुमने फायदा उठा लिया इससे। जब आज के दिन तुम अब रुसवाई के अजाब को चखो, क्योंकि तुम बड़े बनते थे, तकब्बुर करते थे, हक कितनी बार तुम्हारे पास आया तुमने छुटला दिया, बगैर हक के हक भी नहीं ना हक, व बिमा कुंतुम तफ़सुकून, और तुम फिस्क करते थे। ऐसे ही लोगों में कुछ कौमों के किस्से, सबसे पहले कौमे आद का अंजाम है आयत 21 से 28 में, बिल्कुल वही कहानी कि कैसे अल्लाह ने उनको नबी की दौलत दी, उसने अल्लाह से जोड़ा, पैगाम दिया, क़यामत के दिन का खौफ दिलाया, इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम कहा नबी ने, उन्होंने आगे से उल्टी सीधी हाँक दी, क्या तू इसलिए आया है कि तू हमें हमारे खुदाओं से दूर कर दे, अच्छा ले आ फिर जो अजाब है लेके आ दिखा हमें, अगर तू सच है। कहा इसका इल्म तो अल्लाह को पता है और मैं तो तुम्हें पैगाम पहुँचा रहा हूँ, बस मैं देख रहा हूँ कि तुम तो जाहिल कौम हो, और इतने में अजाब के आसार शुरू हो गए। फलम्मा रऊहु आरिदम, फिर उन्होंने एक बादल को देखा जो उनकी वादियों की तरफ आ रहा था, कहने लगे ये तो बड़ा खूब बरसने वाला बादल है। का नहीं बल्कि तुमने जल्दी की इसकी, और असल में उसमें अजाब था। तो दम्मिर कुल्ला शय, चिकना चूर कर दिया, जिसको कहते हैं ना सुरमा बना के रख दिया उसने हर चीज़ का, और अगले दिन सुबह देखो तो कुछ नहीं था उनके घरों में, सब नीस्त तो नाबूद हो गया। आज भी कई ऐसे बॉम्ब, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में आता है कि उसमें से गैस निकलती है, जिधर से गुजरती है वो गैस, इंसान मरते जाते हैं, चीज़ें बड़ी रहती है, खाली घर और लोग नहीं। कोई ऐसी चीज़ है जो पूरे ये आपके कंक्रीट को ख़त्म कर देती है। तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आज लोगों ने मस्नूई तौर पे बनाई, अल्लाह की एक सज़ा जो पिछली कौमों को मिली आज के बड़े बड़े एटम बॉम्ब्स और उससे भी बड़ी थी। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनको जगह दी थी, आंखें दी, कान दिए, दिल दिए, लेकिन उन्होंने इनसे काम नहीं लिया। अल्लाह इनकी तरक्की पे नाराज़ नहीं है, इनके मिस यूज पे नाराज है। तो लिहाजा जब इनके ऊपर अल्लाह की पकड़ आई, फलौला नसरहुमुल्लज़ीन अत्तखज़ू मिन दूनिल्लाही कुर्बानन आलिहतन बल दल्लू अनहुम, फिर जब अल्लाह की पकड़ आती है तो इनके वो खुदा या वो इलाज जिनको ये बड़ी बातें कर कर के पूछते थे, वो इनके काम क्यों नहीं आए? अल्लाह ने पकड़ा तो छुड़ाया क्यों नहीं किसी ने? आज तो हम बड़े फख्र से कहते अल्लाह के पकड़े को फलां छुड़ा लेगा, फलां बुजुर्ग हैं वो ये करेंगे, फलां नबी ये करेगा। अल्लाह कहते हैं बल्कि वो तो खुद सारे भाग गए, ये तो झूठ था, ये तो इनकी खुद साख्ता बातें थी जो वो बांधते थे। अब देखिए कि 2 साल पहले कोरोना आया, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, ना तो तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की ने उसको रोकने में मदद दी। सब यही कहते थे सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए, वैक्सीन निकल रही, और वैक्सीन भी क्या थी, ये नहीं थी कि कोरोना हो ना, कुछ और कहानी थी। अल्लाह ने मजबूर करके दिखाया कि बोलो अपनी तरक्की को। और सारे बुजुर्ग भी तो मौजूद थे, कब्रें भी मौजूद थी, जाहिर है कि जिन मुल्कों में बुतों से मांगते बुत भी थे, उन मुल्कों में कोरोना आया कि नहीं आया? किसी ने कोरोना को किसी मुल्क से पाक किया? क्या ये सिंबल नहीं है कि तुम्हारी तरक्कियां और तुम्हारे खुद साख्ता खुदा अल्लाह के एक हुक्म के आगे चल नहीं सकते? आगे जिन्नात की कुछ बातें आ रही हैं, और ख़ास तौर पे फिर उनका कुरान गौर से सुनना। आयत 29 से 32 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या है। आप बड़े अरमानों और उम्मीदों के साथ ताइफ की तरफ गए थे, क्योंकि मक्का वालों पे हुज्जत तमाम होती दिख रही थी। दाई दीन की ये ख्वाहिश होती है कि मुझसे फ़ायदा ले लो, कोई लेता रहे ना तो सारी ज़िंदगी भी वहीं लगा देता है, और जो फ़ायदा लेना छोड़ दे वो कहता है मैं खुद को ज़ाया क्यों करूँ, मैं क्यों घर बैठूँ, वो कहीं और चल पड़ता है। ये आयतें उसकी मिसाल है। जब ताइफ वालों ने आपकी कदर ना की और आपके साथ बड़ा बुरा मामला किया, तो आप वहाँ से निकल आए दुखी दिल से, और रास्ते में एक जगह ज़रा सा टेक लेने के लिए बैठे तो ऊपर से कुछ जिन्नात आए। सारी कहानी उसकी है। और ये जिन्नात यहाँ सिर्फ कुरान सुन रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कालन से, तो गौर से सुनो और चुप रहो। फिर जब पूरी बात सुन ली, फलम्मा कुदिया, ये बड़ा अहम नुकता है, पूरी बात सुनी, अधूरी सुन के आगे जाके बताना फ़ायदा नहीं देता। जब ये सुन ली, वल्लौ इला कौमी, वापस अपनी कौम में चले गए, क्या करते हुए, मुनज़िरीन, डराने वाले बनकर। कालू या कौमना, कहने लगे हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा अलैहि सलाम के बाद उतारी गई। बिल्कुल यही बात आप सूरत जिन में भी पढ़ेंगे, 29वें पारे में। तो क्या पता चला कि जब एक दफ़ा हक समझ आ जाता है ना, तो फिर दिल चाहता है कि दूसरों को बताया जाए। इसीलिए ये क्या कहते जा रहे हैं बार बार, या कौमना अजीब उदाई अल्लाह, कबूल कर लो ना, लब्बई कह लो ना, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात सुन लो ना, और ईमान ले आओ उस पे, वो तुम्हारे लिए बख्श देगा तुम्हारे गुनाहों को और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो नहीं सुनता तो ना सुने फिर, फलई सभी मोजिज़े फिर अर्दी, वो आजिज़ नहीं करने वाला ज़मीन में, हाँ लेकिन उसका कोई मददगार या कोई भी साथी नहीं होगा। अल्लाह करे कि हम भी इस कुरान को सुनकर अपने प्यारों को इससे जोड़ने वाले बन जाए। आगे आए 33-34 में, पूरी कायनात का खालिक क्या इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि तुम्हारी पैदाइश बड़ी है या आसमानों की? और जिसने पहली दफ़ा बगैर किसी सैंपल के, किसी चीज़ के तुम्हें पैदा कर दिया, ये तो बता दो क्या वो कादिर नहीं है इस पे? क्या युही अल मौता, मर्दों को जिंदा करे? हम देखते हैं कि पहली दफ़ा काम मुश्किल होता है, दोबारा आसान होता है, हर काम का यही हाल है। अल्लाह के लिए ना पहली दफ़ा मुश्किल था और ना दोबारा मुश्किल होगा, इसलिए इनको चैलेंज किया गया। आयत 35 में नबी सल्लम को सब्र की तलकीन है, फसबिर कमा सब्र उलुल अज़्म मिनर रुसुल, बस आप सब्र कीजिए जैसे उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया था। ये उलुल अज़्म रसूल कौन है? हज़रत नूह अलैहि सलाम, इब्राहीम अलैहि सलाम, मूसा अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम और ख़ुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 रसूलों के नामों के साथ उलुल अज़्म नाम आता है क्योंकि ये बहुत आजमाए गए और इन्होंने बहुत सब्र किया था। तो सूरत बड़े ही खूबसूरत पैगाम पे ख़त्म हो रही है कि आप जल्दी ना मचाएं। जिस दिन इनके ऊपर ये वक्त आएगा तो इनको लगेगा एक घड़ी भर दुनिया में रहते है क्या? बलाग, बस इतना लफ्ज़ है, ये नहीं कहा बल्लिग या बल्लिगू, बलाग पहुँचा देना है। खबरें सुनाने के बाद कहते हैं अच्छा जी ये खबरें आपको बता दी गई फलां चैनल से। बलाग फहल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकीन, अब तो नहीं हलाक होगी मगर नाफरमानों ही की कौम। तो क्या पता चला कि दाई दीन को सब्र का रवैया इख्तियार करना चाहिए। अगली सूरत सूरत मोहम्मद है। अंबिया कराम के नामों पे जो सूरतें हैं उनमें से अब ये सेकंड लास्ट है, 3 पीछे पड़ चुके, चौथी ये है और 1 आगे आएगी। نبی کے نام پہ سورت 38 آیات ہے. اس سورت کا ایک اور نام سورت القتال بھی ہے. کھلی تلوار ہاتھ میں لے کے آئی ہوئی سورتوں میں سے ایک سورت ہے, اور اس سورت میں ہفتے اعمال کا بہت تذکرہ ہے. پکی پکائی ہنڈیا نہ جل جائے, کھانا نہ گر جائے, دال ہی نہ گر جائے. کوئی بھی کام کر رہے ہو 10 دفعہ دیکھا کرو کہ صحیح طریقے سے کر رہے ہو. اینڈ رزلٹ یہ تو نہیں کہ سب ڈسکارڈ کر دیا جائے کہ نہیں نہیں یہ نہیں کچھ نہیں یہ اچھا نہیں بنا اور کرو. ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے بیٹھے اللہ سے دعا کر کے بیٹھا کریں کہ اللہ آسانیوں کے ساتھ سے انجام کو پہنچ جائے. ادھوری کوششیں, یاد دل والی کوششیں, بیکاریات والی کوششیں زیادہ فائدہ نہیں لاتی. ایون آپ نماز کیوں نہ پڑھیں, ٹوٹی پھوٹی نماز, رکوع نہیں پورا, سجدے پورے نہیں, مزہ نہیں آئے گا. کھانا پکا رہے ہیں دل نہیں لگا رہے, قرآن سیکھ رہے اور سکھا رہے ہیں اور آپ ایسی کام کر رہے ہیں, زیادہ دیر آپ سے پھر وہ کام نہیں چلے گا. تو ادھر ہفتے اعمال کا بہت دفعہ ذکر ہے, آپ بلکہ نوٹ کیجئے گا کہ کہاں ہیں. ایک لفظ خبت ہوتا ہے اور ایک تب تلو ہوتا ہے, دونوں میں بھی بڑا پیارا ربط ہے. یہ نہیں کہا گیا لا تب تلو اعمالکم, وہ بھی آ رہا ہے, لیکن دوسری جگہ جو ہفت ہے, ایک ہوتا ہے گریجولی, تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے. وہ کہتے ہیں نا کہ قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اور ایک ہوتا ہے کہ ابھی جیسے کھانا بنایا سارے گر گیا. امت مسلمہ کا آج حال کیا ہے, ان کا تھوڑا تھوڑا کر کے جا رہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو آج ڈائریکٹ شروع ہو رہی ہے. صورت میں کوئی حروف مقطعات میں سے نہیں ہے چیز, کوئی نبی کی تعریف قرآن کی بات نہیں, بلکہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا, ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے, کھو گئے. ادل دلال, جیسے لاسٹ ہو گئے, نظر ہی نہیں آ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں اور ایمان لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور وہ حق بھی ان کے رب کی طرف سے, کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم, اللہ نے ان کی پچھلی برائیاں یعنی شارٹ کمنگز جو تھی نا اس کو دور کر دیا, چھپا دیا. اور اللہ بہت ساری باتیں آپ کی میری چھپا دیتا ہے. ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ خود کو یہ کہہ سکے کہ میں قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہوں. یہ اللہ کی شان ہوتی ہے کہ بندے سے کام لے لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے, واصلح بالہم. یہ جو بال ہے نا, یہ حال ہے. حالہم کہنے کے ساتھ بالہم, یہ ایک بڑی پیاری سی اصطلاح ہے. یعنی برائیاں پچھلی دور ہوتی جاتی ہیں اور اگلی خوبیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں. آپ کبھی دیکھتے ہیں کسی کو دین کی طرف آتے ہوئے, یہی نہیں ہوتا, ایک ایک کر کے خامیاں, شارٹ کمنگس, برائیاں, گندی عادات, بولنے میں غیبتیں, چغلیاں اور سوان, یہ کم ہوتی جاتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ اچھی طرح یہ ایسی جیسے گھر صاف بھی کرتے جائیں اور آہستہ آہستہ اس میں کوئی ڈیکوریشن کے پیس بھی رکھتے جائیں, کچھ پھول لگا لیں, کوئی کچھ. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کر دی. اور آپ دیکھ رہے ہیں اگر اوپر لفظ کیا آیا تھا پہلی آیت کے اینڈ پہ, اد اللہ, اور اب آگے کیا آ رہا ہے, ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, اتبعوا الحق من ربهم. یہاں لفظ باطل بھی آ گیا. ہم دیکھتے ہیں جنت میں لے جانے والے کچھ اعمال, کیونکہ ہمیں تو جنت میں جانا ہے. کیا کریں کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں اور ایمان بھی پختہ ہو اور ڈیسٹینیشن بھی مل جائے, جنت کے راستے یعنی سبیل الجنہ پہ چڑھ جائیں. اس کے لیے نمبر ایک ایمان, پکا سچا ایمان, ٹھکا ہوا. اس بات کا یقین رکھ کر یہ کام کیجئے کہ یہ ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. پھر عمل صالح, اور اس میں نماز پڑھنا, صفے پر کرنا. اس کے بارے میں بھی حدیث میں خوشخبری ہے کہ جو صف کو ملاتا ہے وہ جنت میں جائے گا. رستہ ہے, تھوڑی جگہ بنی ہوئی تھی, وہ پیچھے سے آگے آ گیا. پھر ذرا صورت اخلاص پڑھنے کے اوپر جنت کی خوشخبری ہے. یہ ساری حدیث ہیں, اس کے خلاصے ہیں. پھر ذکر اور اذکار کرنا. بیمار کی عادت کو جانے والا اتنی دیر جنت کے پھل کھاتا رہتا ہے. اللہ کی خاطر حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ رہے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا اس کو جنت کے بیچ میں محل ملے گا. پھر اپنے حق سے دستبردار ہو جانا. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر فیصلہ ادھر ہی ہو جائے, ضروری تو نہیں ہے کہ سارے معاملات ادھر ہی آپ کے صحیح ہو جائیں, کچھ آگے کے لیے چھوڑ دیجئے. اور پھر جھوٹ چھوڑ دینا. اسی طرح سے اپنے اخلاق کو عمدہ کرنا, اخلاق کا بدلہ جنت ہے. پھر علم کے راستے پہ چلنا. یہ تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے بات سنی ہوئی ہے, تبھی تو آپ لوگ سن رہے ہیں ابھی تک. پھر اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا, صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کو ملنے جانا, اور کوئی کام نہیں, صرف اللہ کے لیے آئے ہو تو کہا اچھا अल्लाह भी तुम्हारे से मोहब्बत करेगा और जन्नत को आसान करेगा। फिर इस तरह दिन रात यानी पूरे 24 घंटे के अंदर 12 रकत सुन्नतों की अदायगी, जो हम सब जानते हैं सुन्नत मौकिदा भी कहते हैं ना, फजर के साथ 2, जोहर के साथ 4 और बाकी नमाजें। फिर ज़रा मस्जिद की तामीर करना, बड़ी वाज़े हदीस है कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अल्लाह हमें ये सारे ही अमाल या इनमें से जो भी हम कर सकते हैं वो करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद आयत 4-6 में कुफ्फार के साथ जंग के बारे में कुछ हिदायात हैं। सूरत मोहम्मद चूँकि मदनी सूरत है तो इसमें जंगों का सिलसिला शुरू हो चुका था। कुछ आदाब ये दे दिए गए कि मुसला नहीं करना, जो कि उस दौर में होता था, और किसी को ज़ख्मी करके छोड़ नहीं दो। जैसे रिवायत में आता है ना कि जानवर को ज़िबा करो तो कुंद छिरी से नहीं करो, उसको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तेज़ धार के साथ उसको करो। अरब लोग जंगों में जाकर बदले लेते थे, कहते थे ना मरने देंगे और ना जीता छोड़ेंगे, और उसके ज़ख्म और जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ तरह के मामलात ऐसे करते कि वो हैंडीकैप हो जाता। इन सारी चीज़ों से यहाँ रोका गया। फिर इसके बाद अल्लाह की मदद किन के लिए आती है, आयत 7-11 में पता चला, नोट करना चाहें तो कर लें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। इतना खूबसूरत जुमला, इसके बाद तो दिल ही नहीं करता कुछ और करे अंसारुल्लाह बनने के सिवा। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बिल्कुल बराबरी पे ले आए भाई। अल्लाह की मदद क्या है? ऑफ कोर्स अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह के बंदों की मदद। और क्या मिलेगा? वायु सब अक़दामकुम, तुम्हें इस्तकामत मिलेगी, साबित कदमी मिलेगी। इसके बरक्स कुफार के कुछ हालात पेश करके अगली आयत में बता दिया कि काफिर दुनिया में मज़े क्यों कर रहे हैं। आयत 12 में इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती, अल्लाह दाखिल करेगा। अब देखिए वो खुद नहीं होंगे बल्कि उनको दाखिल किया जाएगा। क्या पता चला कि इज्जत और मोहब्बत दी जाएगी वो जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और कुफार को क्या कहा जा रहा है, या तमत्ताउ नव याकुलू न कमा ताकुलुल अनाम। क्या तर्जमा करेंगे आप इसका? आप डिक्शनरी खोलिए, अरबी से उर्दू या अरबी से इंग्लिश है, जो आपकी लैंग्वेज है इसका तर्जमा कीजिए। अल्लाह कहते हैं वो जो कुफार हैं, जो कुफर पे हैं, वो तो मज़े उठा लें और खूब खा लें जैसे जानवर खाता है, लेकिन बिल आखिर आग उनका ठिकाना है। अब वो किस दर्जे का काफिर है, उसको पैगाम पहुंचा और फिर उसने रिजेक्ट किया नहीं किया, ये आपको मुझे नहीं पता, लेकिन जो उस कुफर पे मर गया उसका अंजाम बुरा है। अल्लाह हमें अपनी और दूसरों की हिदायत का जरिया बना दे। आगे आयत नंबर 13-14 में नबी सल्लम की दिलजोई की जा रही है कि आप इतना गम ना करें, आपसे पहले के लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनकी कौमों ने उनको जब वहाँ से निकाल दिया था तो अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। यानी इशारे दिए जा रहे हैं कि अब आप बिल्कुल उसी रास्ते पे हैं जिस पे आपसे पहले के अंबिया कराम थे। आयत 15 में जन्नत के मशरूबात, 4 नहरें जन्नत में जिनका वादा किया गया मुत्तकियों से क्या है, अनहारों में माइन पानी की नहरें, गैर यासिन जिनका पानी बिगाड़ नहीं, पानी खड़ा रहे ना तो उसमें फफूंदी आ जाती है, रंग बदल जाता है। फरमाया जन्नत की नहरों का पानी बहुत ही अच्छा है, मीठा पानी है। फिर अनहार उमिन लबन लम यतगैर तामुहु, दूध की नहरें जिसका टेस्ट नहीं बदला। आप जानते हैं कि दूध तो थोड़ी देर बाहर रखे तो ख़राब होता है, जन्नत में ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ नामों की हद तक है, वो जो वहाँ होगा वो हमें नहीं पता कितना लजीज होगा। फिर तीसरी नहर है अनहार उमिन खमरिन, शराब की नहर, लज्जतिलिशारिबीन पीने वालों की लज्जत का जरिया। दुनिया की शराब गंदी बदबूदार है, जिसने अल्लाह की रजा के लिए ऐसी शराब छोड़ दी जिसको पीते ही अकल खराब हो गई, अल्लाह उसको प्योर मशरूब वाली शराब देगा जिसके बाद ना तो सर धुंकेगा और ना वो कोई फजूल हरकतें करेगा। और लफ्ज़ शराब क्यों इस्तेमाल किया इसलिए कि मशरूब। और दूसरी बात है कि जिन्होंने दुनिया में छोड़ी और जो छोड़ते हैं बड़ी मुश्किल से छुटती है, ये उनको तसल्ली है कि अल्लाह ने तुम्हारे छोड़े हुए को वहां तुम्हारे लिए रख दिया। चौथी नहर वन हारमिन असलिम मुसफ़ा, साफ निथरे हुए शहद की नहर। दुनिया का शहद मक्खी के पेट से आता है, उसका लुआब है, उसका फजला है, वहाँ कैसे होगा नहरों की सूरत में ये अल्लाह जानता है, बस हमारा तो ईमान है ये होगा। फरमाया उसमें हर तरह के फल होंगे, व मग़फ़िरतु मिन रब्बिहिम, और उनके रब की तरफ से मग़फ़रत।